Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Om Power Transmission Limited Q4 and FY 2026 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sayam Pokharna from TIL Advisors. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Darwin. Welcome, everyone. Good evening, and thank you for taking the time out to join us in the maiden earnings conference call of Om Power Transmission Limited. The investor presentation has already been uploaded on the stock exchange and on the company website. To take us through today's results, we have with us from the management team, Mr. Kalpesh Patel, Chairman and Executive Director, Mr. Kanu Patel, Managing Director, Mr. Chetan Modi, Chief Financial Officer. We will start with a brief opening remarks on the business performance from Kalpesh, sir, followed by opening remarks on the financial performance by Mr. Chetan Modi, and then open the floor for a Q&A session. I would like to remind you all that anything and everything said on this call that represents any outlook for the future, which can be construed as a forward-looking statement, must be viewed in conjunction with the risks and uncertainties that we face. These risk factors have been detailed in our prospectus document. I would also like to request all of the participants to ask their questions in Hindi for the purpose of this call as the preferable language. With that said, I would now like to hand over the call to Kalpesh, sir. Over to you, sir.
Good evening, and a warm welcome to the first earnings conference call of Om Power Transmission Limited for the quarter and financial ended March 2026. I am Kalpesh Patel, Chairman and Executive Director of the company. Before I take you through the operating highlights, I would like to thank each of you for the trust you have placed in Om Power Transmission. Our journey as a listed company began on 17th April 2026 with the listing of our equity shares on NSE and BSE after a successful IPO. We believe the capital raised through the IPO will further strengthen our capability and fuel the company's next phase of growth in evolving power infrastructure sectors. For those engaging with us for the first time, let me briefly introduce the company. Om Power Transmission Limited is power infrastructure EPC company with over 14 years of experience in high voltage and extra high voltage transmission lines, substations, underground cable link projects delivered on turnkey basis. The company EPC capability span transmission line and substation from 11 kV to 400 kV and underground cabling up to 220 kV. Our business model is organized around four verticals. Transmission line EPC is our largest segment and accounted for 51.61% of our revenue as FY 2026. Since incorporation, we have erected over 1,000 circuit kilometers of transmission lines. Substation EPC is our second vertical, where we deliver end-to-end service covering both air-insulated and gas-insulated substation along with SCADA monitoring system, contributing 21.86% to our revenue as of FY 2026. Underground cabling is our third vertical, cover high voltage and extra high voltage power system, contributing 19.32% to our revenue. Our fourth vertical is operation and maintenance, where we currently operate and maintain more than 100 substation and more than 400 km of transmission lines under long-term contract, contributing 7.21% to our revenue. Moving to the order book, which remains one of the key performance indicator of revenue visibility for an EPC business. FY 2026 has been a transforming year on this front. We recorded our highest overall order inflow around 615 crores during the year, taking our year-end unexecuted order book to 61 crores, an all-time high for the company. This order book is more than 3x our FY 2023 level and 41% higher than FY25 closing, translating a book-to-bill ratio of 1.38 times and providing healthy revenue visibility for the coming years. The order book is well diversified across our four business verticals, with transmission line EPC at 449 crores, substation EPC at 140 crores, operation and maintenance 21 crores, underground cabling at 10 crores. From client mix perspective, public sector undertaking contributed 82% of the order book of FY26, with the balance of 18% from private sector clients across renewable infrastructure and industrial segments. What started in Gujarat has expanded into Rajasthan, Punjab, Dadra Nagar Haveli, supporting region with rising energy mix. While Gujarat continues to be our anchor market at 82% of the order book, the contribution from the three new geographical represent an important first step towards broadening our bidding universe. Our ability to participate in the rising opportunity in the power sector rests on four strong pillars. First, a 14-year education track record. We demonstrate expertise in delivering specialized power infrastructure projects. This experience has enabled us to pick up increasingly large and complex assignments, strengthening our position as a trusted educated partner in the sector. Reflecting this capability, we are proud to contribute to the industrial evolution underway in Dholera through a 400 kV GIS substation and multiple 400 kV transmission line across the river, our largest project to date. With the combined value aggregated 200 crores, the landmark project marks a new era of growth of the company while reinforcing our ability to execute high-value technical demanding infrastructure projects. Second, it diversifies the growing order book that has now expanded beyond Gujarat into multiple states. Third, on asset-light, capital-efficient business model that has delivered a return on capital employed of 44% in FY26 and FY25. Lastly, established relationship with state transmission utility and PSUs, enabling sustained business visibility and education opportunity. Going forward, our strategic priorities are clear. We intend to systematically expand our geographical footprint and bid for higher value and specialized complex projects. We will continue to focus on operational efficiency, timely education, and disciplined working capital management. We also intend to deploy a portion of the IPO process to our long-term working capital, which will strengthen our capacity to participate in large bid deposits, performance guarantees, and mobilize requirements. With that, I will now hand over the call to our CFO, Chetan Modi.
Thank you, Konstantin. Good evening, everyone on the call. Let me walk through our quarter four and financial year 26 financial performance. For the fourth quarter financial year 26, revenue from operations stood at 174.62 crores, a growth of 67.2% over the 104 crores in quarter four FY25 and 68% sequentially over the 104 crore in quarter three FY26. EBITDA for the quarter stood at 22.87 crore at a margin of 13.9% compared to 17.50% in quarter four FY25 and 12.51% in quarter three FY26. The year-on-year margin moderation reflects normalization from unusually high base of quarter 4 FY25 and we view our full-year margin profile of around 12.7% as the more representative of indicator of our underlying profitability going forward. Further, we would like to point out that it is important to look at an average of trailing four quarters while evaluating the evolving profitability profile of our company in any given period. Given there can be some quarterly lumpiness on account of the project and business vertical mix, profit after tax for the quarter was 16.65 crore with a PAT margin of 9.50%. Coming to the full year, FY26 revenue from operations stood at 449.16 crore, a growth of 60.7% over the 279.44 crores in FY25. EBITDA for the year was 57.11 crores at a margin of 12.72%, in line with the 12.76% in FY25. Profit after tax was 40 crore, growing 81.2% year on year with PAT margin expanding from 7.84% in FY25 to 8.86% in FY26. On return ratios, we closed FY26 with return on equity of 38% and a return on capital employed of 44%. Earning per share for the year stood at 15.53 compared to 8.98 in fiscal 25. The debt to equity ratio was 0.35 times, reflecting our comfortable balance sheet position, which has been further strengthened by the IPO proceeds received in April 26. Taking this into account, CRISIL has upgraded our long-term rating to CRISIL BBB plus stable and short-term rating to CRISIL A2 in its latest update dated April 28, 2026. With that, we would like to open the floor for questions. Thank you.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to please use handsets while asking a question. We also request all participants to please pose their questions in Hindi, as this will be more comfortable for the management team addressing them. Ladies and gentlemen, we will now wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Ashav Patel from Molecule Ventures PMS. Please go ahead.
Thank you for the opportunity. Sir, mera pehla prashna ye hai ki hamara growth industry se bhi kaafi achcha hua hai. Matlab capex cycle to pura positive hai pichle 3-4 saal se T&D mein. But हमारा growth normal industry से भी काफी अच्छा है पिछले 3-4 साल से, तो उसका आप डिटेल में बता पाओगे कि क्या रीजन है हमारे एग्जीक्यूशन का और आने वाले 2-3 साल हमको कैसे दिखते हैं?
So year on year जो है हमारा technical capability हम बताते रहे हैं. Before we are started for 66 kV, then आज की डेट में हम 400 kV तक अपना टेक्निकल कैपेबिलिटी लेवल तक पहुंचे हैं. उसी तरह सबस्टेशन के अंदर भी हम अप टू 220 केवी तक के सबस्टेशन बना रहे हैं और उसी तरह हमने AIS और GIS दोनों के अंदर भी 220 केवी सबस्टेशन और अपना विथ स्काडा मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ में कर रहे हैं. अपने आप को हम खुद ही खुद इम्प्रूव भी कर रहे हैं और साथ साथ में हमारा भी फोकस इंटर स्टेट भी है, तो हम अपने लास्ट एक ईयर से हम अपने आप को उस तरह से एक्सपांड भी कर रहे हैं दूसरे राज्यों के अंदर. और पहले 2 साल पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में काम नहीं करते थे 11 kV सेगमेंट में, लेकिन पिछले 2 साल से हम लोगों ने 11 kV सेगमेंट के अंदर भी अपने आप को इन्वॉल्व किया है और कर रहे हैं. और स्पेशलाइज प्रोजेक्ट जो पाइप फाउंडेशन के ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रहते हैं वो एक हमारी स्पेशलिटी है. वो हमने महिसागर रिवर के पास और अभी जो धोनेरा चल रहा है वो भी हमारा स्पेशलाइज पाइल फाउंडेशन का ही प्रोजेक्ट है. इस पर हम ईयर एंड अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं टेक्निकली और आगे बढ़ रहे हैं सर.
ओके. और सर ये जो हमारा ऑर्डर बुक है करीबन 620 करोड़ का, तो वो आपको कितने समय में पूरा एग्जीक्यूट करता हुआ दिखता है, पहला प्रश्न. और एक और फॉलो अप ये होगा कि अगले साल के नंबर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सालाना टॉप लाइन?
सर जनरली हमारी टाइमलाइन 12 to 24 months होती है, तो एवरेज गिनते तो 18 months का हमारा टाइमलाइन होता है सर. तो मोटा मोटी गिनते तो 18 months में खत्म हो जाता है सर हमारा. और फ्यूचर के लिए सर सेम टू सेम हम ग्रो करते जाएंगे सर, सेम रेशियो में हम लोग सर.
What historical performance we have shown in last three fiscals with the same performance we will grow in this fiscal 2027 as well.
You expect 50%+ growth, FY 2027?
Yes.
Maybe, no?
Yes.
Okay. Okay. And sir, ये देखिए कि काफी अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से बातें आ रही है कि एग्जीक्यूशन T&D करने में काफी दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, काफी चीजों का शॉर्टेज हो रहा है, जैसे कि कंडक्टर है, केबल वायर है, इंसुलेटर का काफी शॉर्टेज है, ट्रांसफॉर्मर्स का शॉर्टेज है। तो इस पे सर आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप क्या स्टेप ले रहे हो? आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस? एग्जीक्यूशन में कहीं प्रॉब्लम आएगा? आपका क्या व्यू है सर इस पे?
सर, ये टोटल जो सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से हम पहले से अवेयर और पहले से रेडी हैं। जैसे कहीं जैसे हमको ऑर्डर मिल रहा है, एलओआई मिल गया है, तो उसके हिसाब से हम अपना ऑर्डरिंग प्लानिंग कर देते हैं, ताकि हमारे पास हमको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है डिलीवरी मटेरियल के लिए। इसलिए वो उतनी दिक्कत हम फील नहीं कर रहे हैं। और कहीं कहीं जो रूटीन आइटम है, वो हम बल्क में ऑर्डर बुक करके रखते हैं, ताकि इनिशियल आने वाले नए प्रोजेक्ट के अंदर भी, जैसे आपने बोला इंसुलेटर, ब्रेकर्स, ये सारी सारी चीज हम एडवांस में ऑर्डर करके रखते हैं, ताकि नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें हमको डिलीवर टाइम से हो जाए।
सर, ओके। और सर, अभी प्राइसेस भी काफी ये सारे प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हुई है। ऑलमोस्ट सब बता रहे काफी प्राइस में इंक्रीज है, तो वो आपको फील नहीं हो रहा है? मतलब ग्राउंड लेवल पे।
सर, हमारा जितना भी ऑलमोस्ट PO है, परचेज ऑर्डर जो हमारे हैं, उसमें सारा प्राइस वेरिएशन कैलकुलेशन रहता है कि जो सिनेरियो के हिसाब से जो प्राइस वेरी होता है, वो हमको कंपनसेट, वो प्राइस वेरिएशन क्लोज के अंदर हो जाता है। सर,
ओके। तो आपकी मार्जिन, सर, यूनिट इकोनॉमिक्स समझना हो तो मोटा मोटी आपकी मार्जिन एग्जीक्यूशन के हिसाब से मतलब परसेंटेज में फिक्स होती है, या जैसे आप बता रहे हो कि वेरिएशन आप पूरा पास ऑन कर सकते हो, तो आपका जो जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो एक मार्जिन फिक्स होता है, मतलब GETCO के साथ और बाकी सब कस्टमर के साथ, या कैसे एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स होता है?
वो एक्चुअली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करता है, और वो किस तरह का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सर, वो एग्जैक्टली वो कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे स्पेशलाइज जॉब कर रहे हैं हम, जैसे पाइल फाउंडेशन है, वो उसमें हमारा स्पेशलाइज जॉब है, तो उसमें हमारा एक मार्जिन लेवल एक अलग से होता है।
ओके, समझ गया। ओके। और सर, इसमें EPC में हमने पास्ट में भी देखा है, काफी सारी कंपनी को दिक्कत होता है पेमेंट कलेक्ट करने में, और बहुत सारी कंपनी ये कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट क्लाइंट, अगर गवर्नमेंट एज अ लार्जेस्ट क्लाइंट होता है, तो सबसे ज्यादा इशू ये फेस होता है। तो आपका सर कैसा पेमेंट कलेक्शन पॉलिसी रहता है, और आपको मतलब कभी दिक्कत आती है वो चीज में पेमेंट कलेक्शन में?
तो बेसिकली हमारे सारे मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर PSU, इन केस ऑफ गुजरात वी मेजोरिटी डील विद द GETCO। सो बेसिकली कलेक्शन टर्म्स आर सच दैट के अवर 80% ऑफ अवर RA बिल गेट रिलीज विदिन 30 डेज, एंड आउट ऑफ रेस्ट 20% दैट 10% गेट रिलीज इन द वंस वी इरेक्ट द सप्लाइड मटेरियल, एंड रेस्ट 10% गेट रिलीज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिसीव ऑफ द फाइनल इनवॉइस। सो वी जनरली डू नॉट फेस एनी चैलेंजेस इन द कलेक्शन।
सर, 80% व्हेन डिड यू मेंशन? 80% कब रिलीज होता है?
80% ऑफ अवर RA बिल, 80% ऑफ अवर RA बिल गेट रिलीज विदिन 30 डेज।
मतलब ऑर्डर मिलने के बाद?
नहीं नहीं इनवॉइस इनवॉइस रेज करते हैं, व्हेन वी रेज द इनवॉइस टू अवर कस्टमर, व्हेन वी बिल टू अवर कस्टमर, सो 80% ऑफ दैट गेट रनिंग अकाउंट बिल गेट रिलीज विदिन 30 डेज।
और GETCO में सर देखेंगे तो GETCO का पेमेंट बहुत अच्छा है पूरे इंडिया के लेवल पे। GETCO में पेमेंट की इतने पिछले में 15-14 साल से काम कर रहा हूं, पेमेंट का ऐसा कोई डिले हुआ या नहीं है, ऑन टाइम ही रहता है सर, उसके एज पर पेमेंट टर्म्स।
ओके, समझ गया। और सर, आखिरी सवाल मेरा, ये टॉप लाइन का अगर हम देखें तो पास्ट में 30%-20% अंडरग्राउंड वाला जो अपना सेगमेंट है, उसमें से भी रिवेन्यू का पिछले साल FY 2025 में 30% था, फिर FY 2026 में 20% था, और अभी ऑर्डर बुक्स का सिर्फ 2% ही है अंडरग्राउंड केबलिंग वाला सेगमेंट, तो मतलब इस पे हमारा फोकस कम हो रहा है अभी या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी वो कम है, क्यों ये कर रहे हैं हम?
सर इसमें बात करते हैं तो सर अंडरग्राउंड केबल का हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूशन कर दिया है सर, और अभी बैलेंस हमने अभी नई पार्टिसिपेट में भी अंडरग्राउंड केबल पर फोकस है सर, मार्जिन पे सिस्टम पे हम मैनेज कर रहे हैं सर, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है सर। और बहुत सारे पाइपलाइन हमारा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी बहुत अंडरग्राउंड केबल में है सर, तो इन नियर फ्यूचर में वो भी हमारा रिकवर हो जाएगा।
समझ गया, ओके सर, काफी काफी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। Our next question is from the line of Sanket Saad with Arth AIF. Please go ahead.
Hello, good afternoon, sir. Sir, आपका जो अभी previous statement था, आपने कहा था कि underground cabling में आपका business कम हुआ है, right? Hello,
sir. हमारा जो underground cable का, sir, हमारा जो underground cable का हमारा जो projection sir, हमने वो टीम ऑन टाइम में हमने कम्प्लीशन कर दिया है सर, उसमें कहा पे हर्डल नहीं आते थे तो टाइमली कम्प्लीशन हमने एग्जीक्यूशन कर दिया है सर, और फर्दर हमारा मोर देन बहुत सारा पाइप लाइन में अंडरग्राउंड केबल का प्रोजेक्ट है सर, तो नियर 3 मंथ में हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग सर।
ओके ओके ठीक है सर। आई बिलीव करेंटली हमारा ऑर्डर बुक 60-70 crore के आसपास होगा, राइट? क्योंकि जो जेटको का अभी अप्रैल एंड में हमें ऑर्डर मिला था 45 crore का, प्लस हमारी जो ऑर्डर बुक मार्च एंड में अराउंड 620 के आसपास की थी, तो ऐड करके 665-670 crore की ऑर्डर बुक होगी, राइट?
जी यस
एज ऑन डेट। तो सर हमारा 745 crore की ऑर्डर बुक थी एंड ऑफ दिसंबर 25 जो हमारे RHP में जो नंबर्स हैं, तो हमारा एक तरह से अभी ऑर्डर्स अभी थोड़े स्लोली आ रहे हैं और हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो आपको अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है क्या कि इंडस्ट्री में ऑर्डर्स आना मतलब थोड़ा स्लो डाउन हो गया है?
सर इसमें बात करते हैं सर, तो अभी फाइनेंशियल का एंडिंग था सर, तो बहुत सारा हमारा टेंडर पाइपलाइन में है, तो अभी इन प्रोसेस में चल रहा है सर, तो अभी नियर 3 मंथ में वो भी प्रोसेस में होकर फाइनल स्टेज में आ जाएंगे सर।
ओके सर, तो अभी कितनी होगी हमारी पाइपलाइन टेंडर्स की?
सर एंड ऑफ मार्च 26 में गिनते हैं सर, तो 900 मोर देन 900 हमारा पाइपलाइन में है सर 31 मार्च तक सर।
ओके ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है प्राइवेट प्लेयर्स पे वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। FY23 में 35% था एंड FY25 में कुछ 15-16% तक पहुंच गया था, तो मैं वो जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है?
सर वो हमारा एक मार्जिन को सस्टेन करके चलना चाहते हैं, तो कहीं कभार प्राइवेट सेगमेंट के अंदर वो हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम वो उसमें थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन हम उसको आगे जैसे कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, स्पेशलाइज जॉब है या मार्जिन अवेलेबल है तो वो हम गेन कर ही रहे हैं, और हमारे जैसे अदर क्लाइंट्स भी बढ़ी रहे हैं सर, प्राइवेट क्लाइंट्स भी।
जी सर तो मेरा जो फॉलो अप क्वेश्चन है सर, एक्चुअली ओम पावर और राजेश पावर के सिमिलर इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन है, लेकिन राजेश पावर का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट प्लेयर से वो तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मार्जिन में डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक में, तो फिर उनका मार्जिन इंपैक्ट घटना चाहिए था अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो।
समझे मैं क्या बोला अभी, जैसे हमारा जो एक मार्जिन हमको सस्टेन करने के चलना है वो मिल रहा है, तो प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी हम उसको ऑर्डर को पिकअप करते हैं और उसको आगे करके एजुकेशन करते हैं, लेकिन जहां ट्रांसमिशन लाइन में वो मार्जिन मेंटेन नहीं होता है प्राइवेट प्लेयर के अंदर, तो हम उसको छोड़ देते हैं, और हमारा ज्यादातर जो है वो ट्रांसमिशन, हमारा कोर बिजनेस ट्रांसमिशन लाइन है सर, आप देखोगे वो ट्रांसमिशन लाइन जब कोर बिजनेस, और राजेश का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में वर्क ऑर्डर और काम फ्लो ज्यादा है, हमारा 66 एंड अबव उसमें हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और हमारा काम उसके अंदर ज्यादा है, EHV हाई वोल्टेज के अंदर।
ओके जी सर, जी सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल डेज की जो साइकिल है वो हम 75 डेज के आसपास रख पा रहे हैं, जबकि दूसरे प्लेयर्स 150 दिन के आसपास रख पा रहे हैं। तो हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब इतनी शॉर्टर कैसे हो रही है दूसरे प्लेयर्स से?
बेसिकली अवर मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर आर लाइन विद द पीएसयू, सो अवर 80% ऑफ द आरएमई गेट कलेक्टेड विद इन 30 डेज, सो इट गेट शॉर्ट ऑन दैट वे। एंड ऑल्सो वी आर एबल टू मेंटेन द अवर इन्वेंट्री एफिशियंटली, एंड अवर वी आर गुड एट द नेगोशिएशन विद अवर वेंडर एज वेल, सो दैट हेल्प अस इन रिड्यूसिंग अवर विद द रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल।
All right, sir. Thank you. That's it from my end.
Thank you. Our next question is from the line of Maitri Shah with Sapphire Capital. Please go ahead.
Hello, good evening. Meri aawaz aa rahi hai? Hello?
Yes.
हाँ हेलो, आपने गाइडेंस 27 के लिए 50% बोला है, मोस्टली अभी टारगेटिंग इट फ्रॉम ट्रांसमिशन सबस्टेशन, बिकॉज हमारा अंडरग्राउंड केबल का ऑर्डर बुक इज क्लोज टू जस्ट 3%, सो कहाँ से ग्रोथ आने वाला है फॉर FY 27?
मैडम इसमें गिनते तो अंडरग्राउंड केबल में भी ग्रो आने वाला है सर। अभी एंटर गुजरात में बहुत सारा भी पाइपलाइन में टेंडर है जेटको का अंडरग्राउंड केबलिंग का, और ट्रांसमिशन ओवर में भी अभी इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, तो दोनों में ग्रो आने वाले हैं मैडम।
और जेटको अभी जो 400 kV सेगमेंट के अंदर ही काम कर रहा है, जेटको अभी 765 का भी प्लान कर रहा है, और 765 ट्रांसमिशन लाइन्स एंड 765 सबस्टेशन भी अभी जेटको के अंदर वो चालू होने वाले हैं, जो आज तक 400 kV तक के ही थे मैडम। तो उधर 765 का भी अपॉर्चुनिटी अपने पास है ट्रांसमिशन लाइन का और सबस्टेशन।
एंड हमने कभी कोई 765 kV का ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर किया है पहले? डू वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट?
प्रेजेंट नहीं किया मैडम, लेकिन हमारा 400 kV का सफिशियंट एक्सपीरियंस है ऑन बेस ऑफ 765 के लिए इलिजिबल हो जाएंगे और कर सकते
हैं। हमारे पास अभी उसमें कोई ऑर्डर बुक अवेलेबल है कि राइट नाउ इट्स नॉट देयर ऑर्डर बुक में?
नॉट राइट नाउ
ओके नो वरीज। एंड दिस ईयर वी हैड वेरी गुड ऑर्डर इनफ्लो, बहुत अच्छा है, क्लोज टू 600 करोड़ इन FY 26। कितना ऑर्डर इनफ्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 27 में, एंड FY 27 एंड में हमारा ऑर्डर बुक टारगेट क्या होना चाहिए एंड ऑफ मार्च एक्सपेक्टेशन?
तो बेसिकली ऑर्डर इनफ्लो विल बी मैचिंग वॉट एवर द रेवेन्यू ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग एट द स्पेस ऑफ द 50%। इन कमिंग पीरियड विद दैट विल मेंटेन द ऑर्डर इनफ्लो टू सस्टेन अवर रेवेन्यू ग्रोथ।
सो 50% ग्रोथ इन ऑर्डर इनफ्लो एज वेल?
Not necessary actually ma'am, that depends on the when we bid for the tenders, so whatever the tender we win and the how fast we are executing our existing order book, so that depends on the different project mix and the business mix.
Okay, and jo 900 crore ka humne bid pipeline diya tha usme hamara win ratio kya hoga?
Madam hamara 30-40% हमारा बीट रेशियो है, उसी रेंज में हम आगे बढ़ते जाएंगे मैडम।
ओके दैट इज गुड। एंड द न्यू ज्योग्राफीज हम जो एंटर करने वाले हैं, कैन यू लिस्ट देम, कौन सी नई ज्योग्राफीज में हम एंटर कर रहे हैं?
मैडम सेम सेगमेंट में हम अनदर स्टेट राजस्थान पंजाब में हमारा काम स्टार्ट हो गया है, और अनदर थ्री ऑफ फोर स्टेट एंड इंडिया में हम सर्च कर रहे हैं मैडम।
ओके, एंड कॉम्पिटिशन कैसा होगा? बिकॉज हम वहाँ पे नए प्लेयर्स होंगे, विल वी गो ऐसा एबिटा कट कर लाइक प्राइस कट करके विल बी टेकिंग द अपॉर्चुनिटी और वी गोना स्टैंड विद आर प्राइस पे बट गिविंग बेटर क्वालिटी? हाउ आर वी गोना लाइक विन नए ऑर्डर्स वो ज्योग्राफी में, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स वहाँ पे होंगे?
मतलब पैन इंडिया में पावर इंफ्रा में बहुत सारा बूम है, तो अनदर स्टेट हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत मार्जिन कम हो सकता है, इतना वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हम कॉन्फिडेंट है कि सेम EBITDA में हम आगे ये टेंडर विन करके एग्जीक्यूशन करने का हमारा विजन है मैडम।
तो मार्जिन पे इश्यू नहीं आएगा, वी कैन मेंटेन ये 13% मार्जिन जो हमने क्वार्टर फोर में किया था फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स?
We are expecting to maintain EBITDA between 12-13% and PAT margin of 8-9%.
8-9% PAT, okay. और कोई सीजनैलिटी है लाइक क्वार्टर सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ स्प्लिट कैसा होगा, 30-70, 40-60? हेलो।
जनरली H1 35 होता है और H2 65 के आसपास होता है।
एंड वी ऑल्सो मेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाने वाले, सो डू वी हैव अभी डिस्ट्रीब्यूशन के कोई ऑर्डर्स एंड हमारे बिड्स में कोई डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर्स है?
मैडम डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कॉम में हमें पार्टिसिपेट टेंडर पाइपलाइन में है, अभी नेक्स्ट मंथ में उसका रिजल्ट आ जाएगा मैडम।
ओके, एंड इसके मार्जिन क्लोज टू 12-13% होंगे?
यस मैम।
ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू आस्क अ क्वेश्चन यू मे प्लीज प्रेस स्टार एंड वन। Our next question is from the line of Aditya Jain, an individual investor. Please go ahead.
Am I audible?
You are audible, sir.
Sir, मेरा question था कि अभी जो अपने current debtors हैं, उसमें से retention money कितना है और मतलब typically एक order में अपना कितना money block होता है retention में?
So at the start of the order, whenever we bill to our customers, 80% हमारा जनरली रिलीज होता है 30 डेज में और 20% ओवरऑल ब्लॉक होता है और ये 20% ओवर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एज एन वी परफॉर्म दी वर्क वो रिलीज होता है। एंड टॉकिंग अबाउट मार्च 26 नंबर, अराउंड 66 करोड़ अभी रिटेंशन में है।
ओके सर, एंड एक क्वेश्चन था फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने मटेरियल कॉस्ट रिलेटिव टू रेवेन्यू बहुत डिक्रीज हुआ है, तो एक बार उसका आप बता सकते हैं क्या बाइफर्केशन एंड अदर एक्सपेंसेस भी अपने सब्सिक्वेंटली इतने चेंज नहीं आया है कंपेयर टू रेवेन्यू, तो उसका कुछ रीजन है क्या?
सो So we are maintaining the GP margin range of around 23-25%. So the same which we have envisaged in March 25 is the same. In the March 26 we have achieved the same. And EBITDA margin of around 12-13%. And more revenues account of the execution rather than supply.
Okay sir. And it, okay sir. Thank you so much. All the best.
Thank you.
Thank you. Participants who wish to ask questions may press star and one. Ladies and gentlemen, to ask a question, you may press star and one at this time. To ask a question, ladies and gentlemen, you may press star and one. We have no further questions at this time, ladies and gentlemen. This brings the conference call to an end. On behalf of Om Power Transmission Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines.